ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। सनन्दनाद्यैः महासिद्धैः शान्तैः संशान्तविग्रहान् उपास्यमानान् सख्या च भर्त्रा गुह्यकरक्षसान् सनन्दनाद्यैर्महासिद्धैः शान्तैः संशान्तविग्रहान् उपास्यमानं सख्या च भर्त्रा गुह्यकरक्षसाम्। सनन्दन आद्यैः, सनन्दन इत्यादि चारों कुमार, महासिद्धैः मुक्त जीव, शान्तैः शांत प्रकृति के, संशांत विग्रहां गंभीर तथा साधु प्रकृति वाले शिव जी, उपास्यमानं प्रशंसित, सख्या अपने मित्र कुबेर जी के द्वारा, च तथा भर्त्रा स्वामी द्वारा, गुह्यक रक्षसां यक्षों और राक्षसों द्वारा। अनुवाद, वहां शिव जी कुबेर गुह्यकों के स्वामी तथा चारों कुमारों जैसी मुक्तात्माओं से घिरे हुए बैठे थे। शिव जी अत्यंत गंभीर एवं शांत थे। तात्पर्य, शिव जी के साथ आसीन पुरुष महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि चारों कुमार जन्म से ही मुक्त थे। यहां यह स्मरणीय है कि इन चारों कुमारों के पिता ने उनसे विवाह करने और नव सृजित ब्रह्मांड में प्रजा बढ़ाने के लिए अनुरोध किया था, किंतु उन्होंने मना कर दिया था। उसमें ब्रह्मा अत्यंत क्रुद्ध हुए थे, उसी क्रुद्ध स्थिति में रुद्र या शिव का जन्म हुआ। इस प्रकार वे परस्पर घनिष्ठ थे। कुबेर जो देवताओं के कोषाध्यक्ष हैं, अत्यधिक धनवान हैं। इस प्रकार से कुमारों तथा कुबेर के साथ उनकी घनिष्ठता से सूचित होता है कि उनके पास अत्यंत दिव्य एवं भौतिक ऐश्वर्य थे। वस्तुतः वे परमेश्वर के गुणात्मक अवतार हैं, अतः उनका पद अत्यंत सम्माननीय है। भगवान शिव अपनी पत्नी को खो बैठे हैं। वो अपने पिता के यज्ञ में जाकर आत्महत्या कर ली। उसके बाद भगवान शिव ने वीरभद्र को उत्पन्न किया। वीरभद्र अन्य भूतों की सेना के साथ जाकर दक्ष का यज्ञ विध्वंस कर दिया। यज्ञ में कई लोग मारे गए, कई के अंग भंग हो गए और बिल्कुल उदासी छा गई। तब श्री ब्रह्मा जी देवताओं और ब्राह्मणों के साथ भगवान शिव को मनाने के लिए कैलाश गए, उनको प्रसन्न करने के लिए। तो उसी संदर्भ में यह वर्णन है कि शिव जी किस प्रकार बैठे थे और क्या कर रहे थे। इस श्लोक में कहा जा रहा है कि भगवान शिव सनंदन आदि चारों कुमारों के साथ बैठे थे और साथ ही उनके सखा कुबेर जी बैठे थे। कुबेर जी और चारों कुमारों के साथ भगवान शिव बैठे थे, इसके अलावा और भी लोग थे, सब भरे हुए थे। यह एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जिनके पत्नी की मृत्यु हो गई थी और जो पहले बहुत क्रोध किए, दक्ष का वध कर दिए वीरभद्र के द्वारा। वीरभद्र वास्तव में शिव जी के ही स्वरूप हैं, तो शिव जी ने ही मारा था दक्ष को। भृगु जी की दाढ़ी नोच ली गई थी और उषा के दांत तोड़ दिए गए थे, भोग देवता की आंखें निकाल ली गई थी, कई कई घटनाएं हुई थी। पर फिर भी इतनी विकट घटना के बाद भी भगवान शिव वट वृक्ष के नीचे कैलाश में बिल्कुल शांत बैठे थे। यहां शांत का अर्थ बिल्कुल मौन होना नहीं है, वे बैठ करके भगवान कृष्ण की कथा कह रहे थे और मुख्य श्रोता थे नारद जी और उनके बड़े भाई शनकादिक और अलकापुरी से आए हुए श्री कुबेर जी भी कथा सुन रहे थे। भगवान शिव के सखा हैं कुबेर जी। एक कवि कहता है कि भगवान शिव अपने पास कुछ नहीं रखते हैं, एक पैसा भी नहीं, लेकिन सबसे धनी देवता उनका सेक्रेटरी है कुबेर जी इनके मित्र हैं, कोई कभी भी जरूरत पड़ गई तो वही सब दे देते हैं। ऐसे तो भगवान शिव स्वयं ही ईश्वर हैं, अधीश्वर हैं इस जगत के। कहीं भी इनका नाम है रखा जाता है तो नाम में ईश्वर शब्द जरूर लगा रहता है, नागेश्वर, विश्वेश्वर। बनारस में इनका नाम विश्वेश्वर है, विश्व के ईश्वर। द्वारका जी में नागेश्वर है, ओंकारेश्वर, सब जगह ईश्वर ईश्वर लगा रहता है। ये ईश्वर है, इस जगत के नियामक हैं, परंतु अपने पास कुछ रखते नहीं है। हैं जगत के ईश्वर, कुछ भी नहीं रखते हैं, यहां तक कि अपने लिए एक फ्लैट भी नहीं रखे, वट वृक्ष के नीचे रहते हैं। इतना असंग्रह है क्योंकि ये भगवान के सर्वश्रेष्ठ परम भक्त हैं, तो अपने आचरण के द्वारा लोगों को शिक्षा देते हैं कि बहुत संग्रह परिग्रह में नहीं पड़ना चाहिए। यद्यपि हैं ये गृहस्थ हैं, पर इस समय ये कहा जा सकता है कि इनकी पत्नी मर चुकी है, अभी वो जन्म लेगी हिमालय में, मतलब उस समय की बात मैं कह रहा हूं, पर्वत की बेटी बनेगी तो नाम होगा पार्वती, तो सती जी बाद में पार्वती जी बनी और भगवान शिव की नित्य प्रिया है, पर फिर भी व्यवहारिक जगत में देखा गया कि सती ने शरीर छोड़ दिया तो हिमालय के घर में जन्म ली, उसका नाम हुआ पार्वती और वो भगवान के साथ ही रहती है हमेशा शिव जी के साथ। पर कुछ काल के लिए भगवान शिव विधुर हो गए थे, उनको चिंता नहीं थी, चाहे स्त्री मरे चाहे कुछ भी हो, उधर बहुत बड़ी लड़ाई हुई थी, दक्ष का वध भी कर दिया गया था, फिर भी भगवान शिव पूर्ण शांत हैं, समशांत विग्रहम, सम्यक शांत विग्रह, कोई क्रोध नहीं, कोई चिंता नहीं, अपना जो कार्य है उसी में लगे हुए थे। यहां पर श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि भगवान शिव के पास उनके सखा बैठे थे, कुबेर जी। कुबेर जी की विशेषता है कि वे भगवान शिव के मित्र हैं, और दूसरी विशेषता है कि गुह्यक रक्षसाम भर्त्रा भर्ता, यक्षों और राक्षसों के स्वामी हैं भगवान शिव, यहां तक कि राक्षसों के भी स्वामी हैं, सब राक्षस इनके कंट्रोल में रहते हैं, इनके पास कोई उपद्रव नहीं करते हैं। कुबेर जी यक्षों और राक्षसों के स्वामी हैं और भगवान शिव के सखा हैं, वे किस लिए बैठे थे? ऐसा नहीं था कि कोई प्रोग्राम हो रहा है कि अब आगे क्या करना चाहिए, बहुत बड़े व्यक्ति का वध हो चुका था, दक्ष का वध हुआ था, तो ऐसी बात नहीं थी कि कैलाश में अब मीटिंग पर मीटिंग चल रही है कि क्या किया जाए, अब तो बड़ा विरोध हो गया है, क्या किया जाए, इस स्थिति में क्या करना चाहिए क्या करना चाहिए, कुछ नहीं, केवल कृष्ण कथा। आगे के श्लोक बताते हैं, भगवान शिव से प्रश्न किया था नारद जी ने, और श्री नारद जी ने किसके विषय में प्रश्न किया था? ब्रह्म सनातनम उपविष्टम दर्भमय्याम वृष्याम ब्रह्म सनातनम नारदाय प्रवोचंतम पृच्छते स्नेवताम सताम। भगवान शिव किस मुद्रा में थे, किस मानसिकता में और क्या कर रहे थे, तो मैत्रेय जी वर्णन करते हैं। उपविष्टम दर्भमय्या वृष्याम, वे कुश की चटाई पर बैठे थे, जब देवता ब्रह्मा जी आदि सब पहुंचे शिव जी के पास तो देखे कि भगवान शिव कथा कह रहे हैं और प्रश्न किया है श्री नारद जी ने। सताम श्रीवताम और अनेक वैष्णव सज्जन पुरुष उस कथा को सुन रहे थे। प्रश्न था ब्रह्म सनातनम, सनातन ब्रह्म के विषय में। सनातन ब्रह्म शब्द का प्रयोग कई बार गीता में हुआ है, भगवान श्री कृष्ण ही सनातन ब्रह्म है, तो भगवान के बारे में नारद जी पूछे थे और भगवान शिव वर्णन कर रहे थे। सुनने वाले सब सताम थे, वैष्णव जन, यही भगवान शिव का काम है। और प्रलय तो लास्ट में करते हैं, उस समय एक नया काम उनका हो जाता है, लेकिन जीवन भर प्रतिदिन उनका एक ही काम है, भगवान का कीर्तन गाना और उनकी कथा कहना और सुनना। वे सब जगह जाते हैं अपनी पत्नी के साथ, और अपनी पत्नी के साथ ही वे कथा सुनते हैं, फिर कथा कहते हैं, सुनते हैं, गाते हैं, नाचते हैं, यही काम है। और कोई उनका डेली ऑफिस नहीं खुलता है वहां पर कि वहां कुछ देखें, कंप्यूटर रन करें और ये करें वो करें, कुछ भी नहीं। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम। भगवान शिव परम आदर्श हैं। किस प्रकार से जगत के भोगों से विरक्त रहना चाहिए गृहस्थ को भी, ये वे शिक्षा देते हैं। मैत्रेय जी कहते हैं कि चरंतम विश्व सुहृदम वात्सल्या लोकमंगलम, जीवों के प्रति अत्यंत वात्सल्य है, स्नेह है भगवान शिव का, इसलिए लोकमंगल के लिए भगवान शिव तपस्या करते हैं, भक्ति के नियमों का पालन करते हैं, इसको योग कहते हैं। और भगवान के कथा कीर्तन में लगे रहते हैं, इसको विद्या कहते हैं संस्कृत में। तो विद्या तपो योगम आस्थितम, देवताओं ने देखा कि भगवान शिव विद्या में लगे हैं, जनरली लगे रहते हैं विद्या। विद्या है श्रीमद् भागवतम पढ़ना, भगवद गीता पढ़ना, उसको बोलना कहना, यह है विद्या, कृष्ण की भक्ति करना। तो विद्या तप और योग में लगे रहते हैं भगवान से, के वे सब आचरण करते हैं विश्व का मंगल करने के लिए। विश्व का अमंगल किस बात में है कि यहां पर जो भोगों के लिए बहुत होड़ है, कंपटीशन है, हम ये प्राप्त कर लें, हम ये प्राप्त कर लें, ये कर लें, वो कर लें, लेकिन विश्व के ईश्वर इन सब वस्तुओं से निष्प्रिय रहकर केवल कृष्ण का भजन करते हैं, ये वो कर रहे हैं। सबके ईश्वर, सबसे बड़े अधिकारी, लेकिन फिर भी सदा भगवान के स्मरण में, जप में, कीर्तन में और कथा में लगे रहते हैं। यहां पर ये बात बताई जा रही है, बहुत बड़ी घटना हो चुकी है, खास अपनी पत्नी की मृत्यु हो गई है और इसके बाद ससुर का ये वध कर दिए हैं दक्ष का, बहुत बड़ी घटना थी, फिर भी भगवान शिव के चित्त को क्षुब्ध नहीं कर पाया। जब ब्रह्मा जी ने मनाया भगवान शिव को कि आप कृपा कीजिए और दक्ष का एक यज्ञ पूरा हो जाए, क्योंकि भगवान की आराधना थी उसमें, तो भगवान शिव कहते हैं कि हे प्रजेश, हे प्रजा के नायक ब्रह्मा जी, अघम प्रजेश बाला नाम न चिंतय नानु वर्णय, वर्णय नानु चिंतय, मैं तो किसी के अपराध के विषय में या किसने क्या गलती किया इसका न तो चिंतन करता हूं न वर्णन करता हूं, कभी मैं मन में भी नहीं सोचा। उसको दक्ष को मारा गया था तो भगवान शिव कहते हैं कि मैं दक्ष जैसे प्रजा के अपराध को न तो मन में रखता हूं और न तो बोलता हूं, कभी बोलता नहीं। तो ब्रह्मा जी ने व्यंग किया, अब चिंतन नहीं करते हैं और बोलते भी नहीं हैं तो इतना बड़ा कांड कैसे हुआ, आपने वध कर दिया और कहते हैं चिंतन नहीं कर। हाँ, तो भगवान शिव कहते वो थोड़ा समय में दंड दे दिया उसको ठीक रखने के लिए, लेकिन मैं इसके बाद वर्णन नहीं किया कि ये किया, ये किया, मार दिया गया, बहुत अच्छा हुआ। इस तरह से मैं किसी के भी अघ का, अपराध का न तो वर्णन करता हूं न चिंतन करता हूं, और यह बिल्कुल बात फैक्ट है। वे कभी कोई चर्चा नहीं की, केवल उन्होंने सुना कि उनकी पत्नी पिता के यज्ञ में जाकर के शरीर छोड़ दी। इस बात से क्रोध नहीं हुआ भगवान शिव को, क्रोध का एक ड्रामा था वास्तव में, और वे केवल दक्ष को दंड देना चाहते थे जिसे और लोग भी सीख सके, अपने घर में आई हुई अपनी बेटी का सम्मान न करना, समाचार भी नहीं पूछना कि तुम कैसे हो, ये बहुत बड़ी गलती थी। और उसके बाद सामने मर रही है, सामने शरीर त्याग दी, लेकिन दक्ष ने ये मना नहीं किया कि नहीं नहीं बेटी तुम मत मरो, कुछ भी नहीं कहा। इसलिए दक्ष को दंड देना जरूरी था, पर वह दंड वैसे दिया भगवान शिव ने जैसे कोई पिता अपने पुत्र को दंड देता है। देखने में भयावह लग रहा था लेकिन वो दंड आवश्यक था। इसके बाद तो इतनी बड़ी घटना के बाद भी भगवान शिव बिल्कुल शांत है, शांत विग्रह। और उनके पास कौन लोग बैठे थे? शांत लोग बैठे थे। जब वो कथा कह रहे थे भगवान कृष्ण के विषय में तब शांतई सनंद नाद्य, सनत कुमार आदि बिल्कुल शांत हैं। शांत का ये अर्थ है कि जो बहुत काम धंधा में नहीं है और भोगों में नहीं है, यहां से दौड़ना धुपना यहां जाना वहां जाना, ये इसको ये जिसमें न हो उसको शांत कहते हैं। भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल या अशांत, भोग और मुक्ति की इच्छा रखने वाले लोग अशांत रहते हैं। यह करना है, वहां से ये लाना है, वो करना है, करना है, उसने कोई अवरोध किया तो उसके प्रति क्रोध हो जाता है। तो काम और क्रोध जिसमें है वो है अशांत। भगवान शिव तो कामारी है, इनमें काम वासना है ही नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई वस्तु की इच्छा नहीं। अगर इच्छा होती तो क्यों नहीं सबसे अच्छा भवन बना लेते। रावण को इन्होंने सोने की लंका दे दिया लेकिन अपने लिए वट वृक्ष है बस, और कुछ नहीं है, कपड़ा भी नहीं है, कपड़ा कहीं पहन लेते हैं मृगचर्म या बाघाम बाघ का चर्म पहन लेते हैं, जंगल में मिल जाता है। और कपड़ा की तो कोई समस्या है ही नहीं, फिर लॉन्ड्री आदि की तो बात ही नहीं है, फिर धुलाना और ये करना वो करना, फिर आयरन देना, ये सब बिल्कुल नहीं है उनमें। और आभूषण क्या पहनते हैं? आभूषण पहनते हैं हड्डी का, अस्थि का गहना पहनते, फूल की माला भी नहीं पहनते, केवल सांप लपेटे रहते हैं। कोई खर्च नहीं है इनके जीवन में, सर्प की माला पहने रहते हैं और लिंगम च तापसा भीष्टम भस्म दंड जटाजिनम। और श्रृंगार क्या है इनका? जटा 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 बढ़ाए रहते हैं, इसका मतलब कि किसी दिन कम ही नहीं करते हैं, अपने आप जटा बन जाती है। अगर आदमी कंघी न करे, साफ न करे, तेल न लगावे तो जटा तो बन ही जाएगी। तो भगवान शिव की जटा बहुत विशाल है, जटा धारण किए रहते हैं। जटा धारण करना एक तापस का एक चिन्ह है, तपस्वी का चिन्ह है, रोज रोज सेविंग करना ये तपस्वी का चिन्ह नहीं है। भगवान शिव तो जब से जन्म हुआ जब से हैं तब से कभी सेविंग नहीं थे, बहुत विशाल जटा है, बहुत सुंदर जटा है। और शरीर पर अंगराग क्या लगाते हैं? भस्म राख लगा लेते हैं, कोई पाउडर स्नो आदि का खर्च नहीं है, भस्म लगाए। वो भी भस्म कौन? जिसको कोई छोटा भी नहीं है, मुर्दे की राख, स्मशान से मुर्दे की राख रहते उसी को लेकर के लगा लेते, फिर भी बहुत सुंदर लगते हैं। क्योंकि सुंदर है इसलिए भस्म भी सुंदर लगता है, तो इसमें सब ये बातें आई है, भस्म और दंड और अजीब। एक छोटी सी छड़ी रखते हैं अपने पास, और अजीन, अजीन का अर्थ है मृग चर्म, पहनते हैं, बस यही है। तपस्वी के लिए यही कहा गया है कि वह वन में वास करे, और वन में क्या मिलता है, वन में मृगचर मिलता है या पेड़ की छाल मिलती है पहनने के लिए, तो भगवान श्री उसी को पहन लेते हैं लज्जा निवारण के लिए। भस्म, दंड, जटा और अजि अंगेन च संध्याब्र रुचा, और भगवान शिव की कांति कैसी थी उस समय जब बैठे थे कैलाश में, तो संध्या काल में सवेरे या शाम को जो बादल की छवि होती है, बादल जैसे लाल लाल दिखते हैं वैसे वो दिख रहे थे। थोड़े दूर से ही श्री ब्रह्मा जी और देवता सब उनको देख रहे हैं, इस तरह से बैठे थे। और चंद्र लेखाम च विभ्रतम, और चंद्र लेखा सिर पर, जटा पर, जटा के ऊपर श्री चंद्रमा विराज रहे थे। भगवान शिव के जटा के ऊपर चंद्रमा रहते हैं, द्वितीय के चांद है। ऐसा कुछ वैष्णव कहते हैं कि जब भगवान शिव ने जहर पी लिया तो जहर बहुत आग दिया, मैं आंच पैदा किया, तो उस जहर की शांति के लिए चंद्रमा दिया गया इनको, शीतलता देने के लिए। चंद्रमा है जटा के ऊपर और उसके ऊपर गंगा जी की धारा है, बहुत सुंदर छवि है भगवान शिव की। जटा, जटा के ऊपर चंद्रमा, चंद्रमा के भी ऊपर, ऐसे जटा से ही गंगा जी निकलती हैं लेकिन चंद्रमा के ऊपर से ऐसे गिरती हैं, इसलिए गंगा जी सबसे श्रेष्ठ है। इस तरह से भगवान शिव विराज रहे थे और सनातन ब्रह्म का उपदेश कर रहे थे, भगवान की कथा में लगे हुए थे। श्री नारद जी मुख्य प्रश्न करने वाले हैं और चारों कुमार बैठे हैं, बहुत अच्छा समाज है। इस तरह से भगवान की कीर्ति गाना, भगवान के विषय में जप करना, इस वास्तव में शांत चित्त से और शांत शरीर से करने में ही सुख देता है, और यही वास्तव में धर्म है। भगवान शिव के पास ब्रह्मलोक से शनकादिक आकर के बैठे थे चारों भाई, और कुबेर जी बैठे थे। कुबेर जी के लिए कहा गया कि गुह्यक और जक्षों के, राक्षसों के, जक्षों और राक्षसों के स्वामी हैं, तो स्वामी का ये अर्थ है कि कुबेर जी जब बैठे तो उनके सब दल भी बैठे थे, सभी भगवान शिव का सत्संग करते हैं। अन्यथा ये कहने की क्या जरूरत थी मैत्रेय जी को कि भर्तरा गुह्यक राक्षसों, गुह्यक और मतलब जक्षों और राक्षसों का भरण करने वाले अर्थात उनके स्वामी श्री कुबेर जी बैठे थे। इसका अर्थ है कि कुबेर जी के साथ जक्ष और राक्षस भी बैठे थे। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि सब राक्षस या जक्ष बड़े खराब स्वभाव के हैं, नहीं, जक्षों में और राक्षसों में भी कई लोग डिवोटी हैं। कुबेर जी स्वयं भी एक जक्ष हैं लेकिन वे बहुत बड़े भक्त हैं, ध्रुव महाराज को उन्होंने वर दिया। जब ध्रुव महाराज इनके सैनिकों को मारे थे अलकापुरी में जाकर के, तो मनु महाराज वहां आए और शांत किए ध्रुव को कि तुम बेकार हत्या कर रहे हो, तो उस समय इस संवाद को सुन करके कि ध्रुव युद्ध रोक दिए, कुबेर जी बहुत प्रसन्न हुए और कहे कि महाराज आपने अपने बढ़े हुए क्रोध को छोड़ दिया, मैं बहुत प्रसन्न हूं। मैंने ये भी सुना है कि आप साक्षात भगवान का दर्शन प्राप्त किए हैं मधुबन में, तो मैं आपको कुछ देना चाहता हूं, जो भगवान से आप प्राप्त किए हैं उसको मैं आप जैसे व्यक्ति को क्या दे सकता हूं, लेकिन फिर भी मेरी इच्छा है कि आप हमारे घर आए हैं और मैं आपको देना चाहता हूं, आप कुछ मांगिए हमसे। ध्रुव महाराज ने अचल स्मृति मांगा भगवान के चरणों में, हमको कभी क्रोध न हो, भगवान का स्मरण हमेशा बना रहे। तो कुबेर जी ने उनको वर दिया, ठीक है। तो इससे सिद्ध होता है कि कुबेर जी बहुत बड़े वैष्णव हैं, भक्त हैं, जो ध्रुव महाराज की भक्ति से प्रसन्न थे। वे कहते हैं कि मैं सुना हूं कि आप पद्मनाभ भगवान के चरण कमलों को प्राप्त कर चुके हैं, उनसे मिल चुके हैं। तो ऐसे कुबेर जी भगवान शिव के पास बैठे हैं, कथा सुन रहे हैं। तो कुबेर जी बहुत बड़े भक्त थे और कुबेर जी के और भी जो यक्ष राक्षस साथी थे तो वे सब भी शांत भाव से कथा सुन रहे थे, कोई वहां गड़बड़ी नहीं थी। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम में ये बात संकेत की जाती है कि वैष्णव को भक्त को शांत होना चाहिए, शांत रहना चाहिए, बहुत भोगों की लालसा नहीं, और भगवान के श्रवण कीर्तन के लिए और काम धंधा को भी ठप करना चाहिए, नहीं तो शांति नहीं रहेगी। भगवान के कथा के लिए शांति चाहिए, विचार सबसे बड़ा काम है जीवन में, कृष्ण के विषय में बोलना सुनना, इसी से कृष्ण में प्रीति होगी। इस काम के लिए अन्य काम को लूप लाइन में डालना जरूरी है, इसको किनारे करना चाहिए, तब व्यक्ति भगवान में अपने मन को रख पाएगा, नहीं तो नहीं रखना बहुत कठिन है। चंचलम ही मन कृष्ण। तो भगवान शिव इस प्रकार के समाज में बैठते हैं जहां भगवत कथा के अलावा और कोई कार्य नहीं है, शांत है, सभी श्रोता शांत हैं और वक्ता सम शांत, यहां लिखा गया सम्यक शांत। यह सब श्रीमद् भागवतम में दिया गया है, ये हम ही लोगों के शिक्षा के लिए है, हमें इन बातों को ग्रहण करना चाहिए और इस तरह से अपने को सब ओर से एकाग्र करके भगवान में चित्त का अभिनिवेश करना चाहिए। मैं यहां पर समाप्त करना चाहता हूं, आज बद्धवा जी के यहां जाना है, वहां श्री विग्रह का अभिषेक है, हम सोचते हैं कि आप सब वैष्णव भी जाने वाले हैं, यही समाप्त करते हैं। हरे कृष्ण, जय श्री प्रभुपाद। कोई प्रश्न है? एकाध प्रश्न
तो आया था सुना,
नहीं भगवान ठीक किया, जो भी किया, कभी कभी पिता भी इतना नाटक करता है अपने बच्चे को कि तुम्हें मैं जान से मार दूंगा, ऐसे कहता है ना। लेकिन भगवान शिव ट्रांसडेंटल धरातल पर है, उनमें क्रोध संभव ही नहीं है, तो उन्होंने जो कुछ भी किया तो अपने स्वरूप में रहकर कहीं किया, वास्तव में क्रोध नहीं कहा जाएगा, क्योंकि स्वयं कहते हैं कि मैं किसी भी व्यक्ति के दोष का न वर्णन करता हूं न चिंतन करता हूं, वर्तमान क्रिया लगा रहे, ऐसा नहीं करें कि मैं चिंतन नहीं किया या नहीं करूंगा, ये कर रहा हूं, मैं चिंतन नहीं करता हूं, इसका अर्थ है कि तीनों काल में ठीक बैठे हैं। और यहां सम शांत विग्रह, अत्यंत शांत शरीर है भगवान का, तो क्रोध नहीं हुआ था उसको सामान्य जनता के क्रोध जैसा नहीं लेना चाहिए। बड़े लोगों का जो कुछ भी होता है तो वो अलौकिक होता है, तो हम लोगों का जो माइंड है किसी भी बात को लोक में घसीट करके लाता है, जैसे दूसरा कोई क्रोध किया वैसे भी क्रोध किए, वो भी क्रोध किए, दूसरा कोई क्रोध करेगा तो बहुत मारपीट हो जाएगी, इसके बाद केस मुकदमा कोर्ट में दौड़ते रहो, और जब आदमी बैठेगा किसी के साथ तो यही चर्चा करेगा, तो अपनी साबसी गाएगा, हमने ठीक कर दिया, वो ठीक किया, हमारी स्त्री मर गई, अच्छा हमारी पत्नी मर गई, उसकी बेटी थी, उसने नहीं समझाया, उसने नहीं मनाया, ये नहीं किया, कितना दिन लग जाएगा इसमें, आदमी बहुत वर्णन करता रहता, लेकिन शिव जी तो इसका कोई वर्णन नहीं किया। दंड जरूरी था, दंड देना और क्रोध करना दोनों में अंतर है, एक वात्सल्य है उनके उनके मन में। दक्ष को भी भगवान शिव कोई अपमान करने वाला एक शब्द भी नहीं बोले। प्रजापतियों के यज्ञ में जब भगवान शिव उनको प्रणाम नहीं किए, इसी का उन्हें बहुत दुख लग गया, ये थोड़ी सी बात के लिए। तो मान लीजिए अपना दामाद कहीं सभा में आवे या बैठा हो पहले से, और ससुर जी बाद में जा रहे हैं, हो सकता है बेचारे का ध्यान न गया हो, तो भगवान शिव तो कहते हैं कि मैं तो भगवान कृष्ण को प्रणाम कर रहा था, उनके हृदय में, दक्ष के हृदय में जो भगवान कृष्ण है, मैं उनको मन ही मन प्रणाम कर लिया। इससे इतना रंज हो गए दक्ष प्रजापति, इतना ज्यादा कि भरी सभा में गाली देना चालू किए शिव जी को, ये सामने बैठा है, ये मेरा शिष्य है, मेरा पुत्र है, मेरी पुत्री के साथ इसका विवाह हुआ है, कैसा भेष बनाया है ये नालायक, इसके साथ मैं अपनी पुत्री का विवाह किया, नाश कर दिया अपनी बेटी का, देखते हैं न कपड़ा पहना है न कुछ भी, हड्डी का गहना लगाया है, जटा बढ़ाया है, क्या क्या वो गाली दे रहे थे। ब्रह्मा जी वहीं बैठे थे तो किसी ने कहा तो आप विवाह क्यों किए, आप अपनी पुत्री का विवाह क्यों किए, इतना नालायक था। तो यहां तक दक्ष कहने लगे मैं इनके कहने से किए, ये महाशय बैठे हैं ना हमारे पिताजी, वो ब्रह्मा जी के पुत्र थे दक्ष, तो मैं इनके कहने से कर दिया, यही इसके लिए हमारी बेटी के लिए वर खोजे थे। अब तो शिव जी को गाली दे ही रहे थे, अपने बाप को भी गाली देने लगे, मैं इनके कहने से विवाह कर दिया। वास्तव में दक्ष प्रजापति के जितने भी दामाद थे उनमें सबसे श्रेष्ठ भगवान शिव थे, ऐसा महान पुरुष कब मिलेगा किसी लड़की के लिए। लेकिन जब दृष्टि बदल जाती है तो व्यक्ति गुणों में ही दोष निकालने लगता है। इतना गाली दिए भगवान शिव के अपमान को नंदीश्वर नहीं सह सके, वे कुछ कहने लगे, लेकिन भगवान शिव एक शब्द भी उनको जवाब नहीं दिए। भागवत में पढ़ेंगे, इसी अध्याय में, दूसरे अध्याय में है, इसी स्कंध में, एक शब्द भी नहीं बोले। और दक्ष प्रजापति ऐसी कोई गाली नहीं थी जो नहीं दिए शिव जी को, और यहां तक कहे कि इसको इसका जो वेतन मिलता है वो बंद किया जाएगा, आज यज्ञ में कोई भी हक नहीं मिलेगा, इस तरह से साफ दे दिए। फिर भी भगवान शिव क्रोध नहीं किए, जब नंदीश्वर बोल रहे थे तो भगवान शिव उनको इशारा किए बंद करो, और उठ करके चले गए सभा से, पर उनको कोई गाली नहीं दे। लेकिन उनमें क्रोध होता तो वह क्रोध वहां क्यों नहीं आया, अपना अपमान भरी सभा में हो रहा है और फिर भी कुछ नहीं बोल रहे, तो क्रोध नहीं है वास्तव में उनका। भगवान शिव अद्भुत अलौकिक स्थिति में है। यहां मैत्रेय जी कहते हैं कि वात्सल्य के कारण, जनता पर वात्सल्य है इसलिए वे इस प्रकार के आचरण करते हैं, भगवत कथा कहते हैं, सुनते हैं, आचरण करते हैं। तो देखने में लगता है कि क्रोध की है, लेकिन क्रोध नहीं है। हाँ ये नहीं तो हम लोगों को ऐसा नहीं लगना चाहिए, उनके एक्शन को नहीं देखना है, उनके बारे में जो मैत्रेय जी कहते हैं उसको सुनना चाहिए। वो जो कहते हैं वो प्रमाण है, सुखदेव जी जो उनके विषय में बोलते हैं वो प्रमाण है, देख करके नहीं समझ सकते। जैसे कोई मान लीजिए पिता है और उसकी अपनी पुत्री है, अपनी ज्योति पुत्री को पिता आलिंगन करता है, पर जिसके मन में कसाय भरा है, दोष है, वो देखेगा ये व्यक्ति एक लड़की का आलिंगन कर रहा है। क्यों आलिंगन वो दूषित आलिंगन नहीं है, वो स्नेह का प्रतिरूप है, अपनी पुत्री को आलिंगन करता है। इस तरह से भगवान शिव ने क्रोध किया, देखने में लगता है लेकिन वास्तव में क्रोध नहीं है।
अंग्रेजी
हिंदी जानते हैं तो क्यों अंग्रेजी
बॉम्बे में रजस गुण भारी है, कभी कभी रस को जो वातावरण है करते हैं शांत जिला पॉजिटिव रहता है और कृष्ण कथा में मन ज्यादा मुश्किल रहता है, तो आप रस को हो गया हमारे तो क्या जैसे हम और मन लगा सके
सुनना चाहिए भगवान शिव कैसे अपना मन लगा लिए हैं। वो तो तमोगुण के मिनिस्टर हैं, तमोगुण को कंट्रोल करते उसके द्वारा, लेकिन फिर भी इतना शांत भगवान की कथा आदि में है। गृहस्थ हो चाहे सन्यासी हो, चाहे ब्रह्मचारी हो, वानप्रस्थी हो, कोई भी हो, ये भगवान की भक्ति करना कॉमन चीज है, तो अपनी अपनी स्थिति के अनुसार इसको कंट्रोल करना चाहिए। रजोगुण को रजोगुण रहेगा, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं रहेगा, रहेगा लेकिन सत्गुण से उसको दबा करके रखना चाहिए, तो सत्गुण रजोगुण से तमोगुण को दबा कर रखना चाहिए, यही गीता में उपाय बताया गया है। और जहां तक हो अपने दोषों को अपने क्रोध को यदि पकड़ने लगे आदमी, ये दिखाई देने लगे कि ये हमें क्रोध आया, तो इस तरह की दृष्टि आते ही वो आधा क्रोध शांत हो जाता है, उसी समय उसकी जड़ कट जाती है, लेकिन दिखाई पड़े तब ना कि हमें क्रोध आया, पर तटस्थ होकर के देखेगा तो फिर वो शांत हो जाएगा। भगवान का नाम जप करना, प्रणाम करना, वैष्णवों का संग करना, वाणी पर नियंत्रण रखना, भगवान गीता में वाणी के तप का वर्णन किए हैं, अनुद्वेग कर्म वाक्यम सत्यम च प्रिय हितम च जत स्वाध्याया भेषणम चैव वांगमयम तप उच्यते। यदि वाणी पर कंट्रोल किया जाए तो क्रोध मर जाता है, क्रोध का बल है परुष वचन, कठोर वचन, इसलिए वाणी को संयम में रखना चाहिए। उसके लिए जरूरी है कि अध्ययन करना चाहिए और जप करना चाहिए, दो काम करना चाहिए। भगवान गीता में कहते हैं क्या अध्याय स्वाध्यायाभ्यसनम चाहिए, स्वाध्याय पढ़ना, पढ़ना उच्च स्वर से पढ़ना चाहिए। भागवत आदि पढ़ने मौन कुछ लोग पढ़ते हैं, उसको वाणी का लाभ नहीं मिल पाता है, बोल करके पढ़ना है, और अभ्यसनम जप कंटिन्यूअस करना है, जप करना है, तो वाणी का तप है। और अनुद्वेग कर्म वाक्यम ऐसा वचन बोलना जो किसी को उद्वेग न दे, उद्वेग न दे तो क्रोध मर जाता है। एक ही उपाय बताया गया है क्रोध रोकने का, कि वाणी से कुछ बोले न, लेकिन क्रोध आने पर बिना बोले रहा नहीं जाता है। तो वो वीर है जो अपने वाणी को संभाल ले। ऋषि का अर्थ होता है मंत्रों का ज्ञाता, ऋषय मंत्र द्रष्टार शंकराचार्य जी लिखे हैं इसका अर्थ, जो वेदों को शास्त्रों को जानते हैं खूब अच्छी तरह से आचरण करते हैं। और मुनि का अर्थ होता है फालतू नहीं बोलने वाला, बकवास नहीं करने वाला, केवल भगवान का जप करने वाला, कीर्तन करने वाला, उसको मुनि कहते हैं। जो मौन रखे उसको मुनि कहते हैं। हाँ, तो नारद जी तो कीर्तन के आचार्य हैं, यही असली मौन है, यही मुनि का काम है। हाँ, भगवान की कथा कहना, भगवान का कीर्तन करना, हमेशा 24 घंटे लगे रहना भगवान के भक्त कीर्तन में, दूसरी बात फालतू न बोलना, इसको मुनि कहते हैं। दोनों एक ही व्यक्ति हैं, लेकिन अलग अलग गुणों के अनुसार उनको नाम दे दिया जाता है। जैसे वैष्णवों को कभी साधु कहते हैं, कभी वैष्णव कहते हैं, कभी भक्त कहते हैं, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो ये विशेषता बताता है कि फालतू नहीं बोलते हैं, भगवान की बात बोलते रहते हैं। मुनि और ऋषि ये लोग भागवत पढ़ते रहते हैं, गीता पढ़ते रहते हैं और शास्त्र ही पढ़ते रहते हैं, उसके अनुसार आचरण करते हैं। दोनों ये कहीं हैं। इनका प्रश्न, शिव जी ऐसा व्यस्त क्यों धारण करते हैं? ये सब करते हैं लोक मंगल के लिए। पहला आशय तो ये है कि ईश्वर जब भोग में नहीं है तो दूसरा आदमी सीख सकता है कि भोगों में कोई दम नहीं है। जब भगवान शिव आखिर क्यों नहीं भोग भोगते हैं, तो उससे लोग सीखेंगे, वैराग्य की शिक्षा लेंगे। और नहीं ईश्वर जो मालिक है वही खूब जीत जाग से रहे, खूब पैसा संग्रह करके भोग भोगे, तो दुनिया देख करके उनका नकल करेगी। जो जो श्रेष्ठ आदमी करता है उसी की नकल करते हैं सब। तो भगवान शिव इसलिए भी रखते हैं कि इसमें कोई खर्च नहीं है और कोई तबाही नहीं है, कोई रजोगुण नहीं। दूसरी बात है, पद्म पुराण में एक कथा है कि भगवान शिव तिलक करते थे, कंठी बांधे थे, वैष्णव भेष में रहते थे, तो उनके देखा देखी जितने भी राक्षस थे वे सब भी वैष्णव भेष धारण करने लगे, उनके देखा देखी। पर वे ट्रेंड नहीं थे, उनको कोई शिक्षा नहीं दी गई थी, तो आचरण सब राक्षस का था लेकिन वेश वैष्णव का था। तो भगवान ने स्वयं ही कहा है शिव जी से, पद्म पुराण में बात आई है कि आप इस भेष को छोड़ दीजिए, क्योंकि देवताओं को तंग करते थे। देवताओं ने भगवान से प्रार्थना किया कि प्रभु हमारी रक्षा कीजिए इनसे, तो भगवान जब चले मारने के लिए राक्षसों को तो चक्र काम नहीं कर रहा था, सुदर्शन चक्र जा करके लौट जा रहा है, तो क्यों? क्योंकि वैष्णव का वध नहीं कर सकता है, भगवान का चक्र वैष्णव, यहां तक कि भेषधारी वैष्णव का भी वध नहीं कर सकता। जो व्यक्ति तिलक किया है, कंठी बांधा है, तो वेश धारण करना भी एक भक्ति है। श्रील रूप गोस्वामी पाद ने तिलक धारण को 64 भक्ति में एक भक्ति कहा है, भगवान का चिन्ह है। तो चक्र काम नहीं कर रहा था, वो लौट जा रहा है, तब भगवान ने शिव जी से कहा, निवेदन किया कि आप ये वेश छोड़ दीजिए वैष्णव का, जिस आपके देखा देखी सब छोड़ देंगे, इसके बाद मेरा चक्र उनको काट सकते हैं। इसके लिए भगवान शिव भेष धारण नहीं करते, नहीं तो उनको देख करके ऐसे ही अनवांटेड लोग मतलब के भेष धारण करते हैं और बुरा काम करते हैं।
भगवान से कीर्तन करते हैं तो
उनके पास बहुत लोग हैं बजाने वाले, यहाँ स्कान बॉम्बे से ले जाने की जरूरत नहीं है कैलाश में, उनके पास बहुत से ट्रेंड लोग हैं, वो नाचते हैं तो नाच के अनुसार बाजा बजाने के लिए और गाने के लिए, स्वयं नारद जी ही वहां वीणा बजाने लगते हैं। श्री नारद जी हैं, सनत कुमार हैं, सुखदेव गोस्वामी हैं, और भी अनंत अनंत देवता पहुंचते रहते हैं उनके यहां, मानते हैं। भगवान कृष्ण की ही कथा तो सुन रहे हैं ना, वो हैं शिव जी को भक्त नहीं मानते, शिव जी के भक्त कृष्ण को नहीं मानते, तो सभी लोग ऐसी बात नहीं कि नहीं मानते हैं, कुछ ऐसे होते हैं शिव जी को ही मानते हैं, ठीक है कम से कम कथा कीर्तन में बैठते हैं उनके पास, तो भगवान की ही कथा शिव जी करते हैं तो सुनते हैं, लेकिन नहीं मानते हैं ऐसी बात नहीं है। भगवान शिव की लीला में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो भगवान कृष्ण को न मानता है, भागवत में सब लिखा गया है। तो आजकल के तथाकथित भक्त नहीं मानते हैं तो वो तो उनकी अपनी बात है, नहीं मानते। घर से बोल रहे हैं क्या? भगवान के कहने से डालते हैं, क्या करें, सोना रखेंगे तो कोई मार करके ले जाएगा, हड्डी कोई नहीं पूछेगा। गौर किशोर दास बाबा जी थे, वो जहां लोग मल त्यागते हैं वहां बैठकर जप करते थे, इसलिए कोई आवे न, कोई जाता ही नहीं था, डिस्टर्ब से बच जाते थे, डिस्टर्बेंस से बच जाते थे। तो आप पूछे कि भगवान कृष्ण के भक्त होकर के इतने अशुद्ध जगह पर क्यों बैठते? कृष्ण भक्ति के लिए ही ऐसे बैठते, और मनुष्य की हड्डी कोई धारण करे तो उसके पास कौन बैठेगा? जो बहिर्मुख लोग हैं तो नहीं बैठेंगे, लेकिन भगवान नारद जी या सनकादिक ये सब बैठते हैं, डेली का उनका काम है, एवरी डे सत्संग होता है। ठीक है, अब चलेंगे। हरे कृष्ण, धन्यवाद।